धवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर 15 ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए
सवसामुनं
मुनिसुवय देशयरं पणमिय मुनिसुवयं जिनं देवं संकममनुगमिनं जहासुवं वर्णयिष्यामो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा चल रही है, उसमें से संक्रम अनुयोग द्वार को देखते हुए जो प्रदेश संक्रम का विषय है, वही 16वें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 418 पर हम आ गए, 418। देखो यहाँ हम नीचे का पैराग्राफ देख रहे थे, सभी लाइट लगाने रही है। नीचे वाला राइट साइड का नीचे एकदम राइट एक्सट्रीम राइट। हाँ चलो देखो 418 पेज पर हम देख रहे थे। अब ये जो उद्वेलना संबंधी बातें चलेगी, हमने 5 प्रकार के संक्रम देखे थे, भागार के अपेक्षा उसके नाम है। एक है उद्वेलना संक्रम संक्रमण, अध प्रवृत्त विध्यात गुण संक्रमण सर्व संक्रमण। उद्वेलना संक्रमण विशिष्ट प्रकृतियों का है और वो मिथ्यात्व में आने पर होता है। वैसे देवगति वगैरह के तो पहले एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक के जीव करते, जो नहीं बांधते हैं ना वो उद्वेलना करते रहते। आहार की उद्वेलना हमने देखी थी असंयत में आने पर होती है, हाँ अंतर्मूत में चालू हो जाती है। और कब तक होती है? जब तक उसकी सत्ता नष्ट नहीं होती तब तक। पल्ल के असंख्यात भाग में वो पूर्ण हो जाते हैं। अब नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना 418 पेज पर, वहां से हम पढ़ेंगे। अब सब उद्वेलन प्रकृतियों की उद्वेलना के क्रम की प्ररूपना की जाती है, यथा अध प्रवृत्त स्थिति कांडक पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। स्थिति कांडक यानी वो तो अन्य प्रकृति कांडक रूप से वो अन्य प्रकृति रूप होते रहता है। उन स्थितियों का जो प्रदेशाग्रह यानी उन निषेकों में जो परमाणु है प्रथम समय में उत्कीर्ण किया जाता है वह स्तोक है, यानी पहली फाली जिसको हम कहेंगे। द्वितीय समय में जो प्रदेशाग्रह उत्कीर्ण किया जाता है वह असंख्यात गुणा है। तृतीय समय में जो प्रदेशाग्रह उत्कीर्ण किया जाता है वह असंख्यात गुण है, यानी प्रतिफाली असंख्यात गुणा क्रम से होता है। उत्कीर्ण होने ने अन्य रूप से हो जाना नीचे आना सबके लिए उत्कीर्ण कहते हैं। स्थिति कांडक होना उसके लिए कांडक उत्कीर्ण कहते हैं।
यहाँ पे तो अन्य रूप होना ऐसे ही लेना।
हाँ क्योंकि स्थिति घटती है और अन्य रूप भी हो जाता है, वो कांडक रूप से हो जाता है। इस प्रकार अंतर्मूल काल तक असंख्यात गुणी वृद्धि के क्रम से ले जाना चाहिए। वो असंख्यात का प्रमाण क्या है? तो असंख्यात गुणा तो कहते हैं पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग है। अब ये जो उत्कीर्ण होता है नीचे आते हैं परमाणु, तो नीचे आते हैं तो स्थिति कांडक घात होता है इतना ही कहा, तो उसमें अपने निषेकों में भी नीचे आएंगे और पर प्रकृति में भी जाएंगे दोनों ही। तो अन्य प्रकृतियों में जो प्रदेशाग्रह दिया जाता है वो स्तोक है, देखो उसका प्रमाण बताएं। और स्वस्थान में जो प्रदेशाग्रह दिया जाता है वो असंख्यात गुणा है। जो प्रदेशाग्रह स्वस्थान में दिया जाता है वह गुण श्रेणी क्रम से दिया जाता है, यानी गुणित प्रमाण में दिया जाता है। और जो प्रदेशाग्र परस्थान में दिया जाता है वह विशेष हानि के क्रम से दिया जाता है। यह विधि प्रथम स्थिति कांडक की है। अब जो विधि प्रथम स्थिति कांडक की कही गई है वही विधि द्वितीय कांडक से लेकर द्विचरम कांडक तक सब कांडकों की कहना चाहिए। अंतिम स्थिति कांडक का प्रमाण पल्लवम का असंख्यातवा भाग है। उसका सब प्रदेशाग्र असंख्यात गुणित श्रेणी से परस्थान में ही दिया जाता है, इसलिए यहां गुण संक्रमण बताया। पहले तो केवल स्थिति कांडक घात होते पर प्रकृति में बहुत थोड़ा दिया जाता था, और पर प्रकृति में जो असंख्यात गुणा श्रेणी रूप से दिया जाता है वो अंतिम कांडक में दिया जाता है। तो कहते उसमें पर में ही दिया जाता है। अंतिम स्थिति कांडक जो है वो भी कितना बड़ा है तो पल्ले का असंख्यात्व भाग, और वो कांडक घात होकर स्थितियां घटकर सब प्रदेशाग्र असंख्यात गुणा श्रेणी से परस्थान में ही दिया जाता है। प्रथम स्थिति कांडक की स्थितियां बहुत है, यानी कांडक का प्रमाण ज्यादा है। द्वितीय स्थान स्थिति कांडक की स्थितियां विशेषहीन है। तृतीय स्थिति कांडक की स्थितियां विशेषहीन है। इस प्रकार अनंत रूप निधा से, यानी प्रति कांडक अनंत रूप निधा है ना, द्विचरम स्थिति कांडक तक ले जाना चाहिए। और द्विचरम स्थिति कांडक की स्थितियों से चरम स्थिति कांडक की स्थितियां असंख्यात गुणी है, यानी अंतिम एक कांडक बहुत बड़ा है, असंख्यात गुणा बड़ा है, लास्ट वाला। पेज नंबर 419। अब प्रति स्थिति कांडक का उन्होंने स्वरूप बताया। पहला कांडक है उससे दूसरे कांडक का अर्थ होता है कांडक का आयाम, उनमें नंबर ऑफ स्थितियां, वो विशेषहीन विशेषहीन होते चली जाती है ना, क्योंकि जितनी स्थिति कम होती है उतना कांडक भी छोटा होता है, परंतु अंतिम कांडक असंख्यात गुणा वाला है। यहां बात उद्वेलना की हो रही है, ये संक्रम में प्रदेश संक्रम का विषय चल रहा है और एवं उद्वेलना की बात हम देख रहे थे। उसमें उद्वेलना का प्रमाण बताते हैं कि पहले में पहले स्थिति कांडक घात होते रहते हैं, और स्थिति कांडक घात होकर वो परमाणु अपने में ही दिए जाते हैं असंख्यात गुणाक्रम से, और पर प्रकृति रूप बहुत थोड़ा दिया जाता है, इसलिए उसको वो गुण संक्रमण नहीं उद्वेलना संक्रमण कहा। थोड़ा थोड़ा जाता है पर प्रकृति में जाता है। अब प्रति कांडक विशेषहीन विशेषहीन स्थितियां होती है और अंतिम में असंख्यात गुणा होती है। अब यहाँ नया पैराग्राफ 419 पेज पर परंपरोपनिधा की अपेक्षा। परंपरोपनिधा ने एकदम जम करके बताएंगे, इतने जाने पर इतना होता है, इस तरह से, यानी पहले विशेषहीन विशेषहीन होता है वो अनंत रोपनिधा। प्रथम स्थिति कांडक उपनिधा में कितने ही स्थिति कांडक संख्यात गुणहीन है और कितने ही असंख्यात गुणहीन, क्या कहना चाहते हैं? यानी प्रति कांडक, कांडक का अर्थ होता है कांडक का आयाम, नंबर ऑफ निषेक, वो विशेषहीन विशेषहीन जैसे हम कहते हैं ना, पहले में इतने हो गए, दूसरे में थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम, तो थोड़े कम तो आधे भी हो जाएंगे, आधे के आधे भी हो गए, आधे के आधे भी हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? संख्यात गुणाहीन कहेंगे। एक बार आधा हुआ तो भी संख्यात गुणाहीन, ये नंबर ऑफ निषेक की अपेक्षा बद, यानी स्थिति आधी होगी, आधी से आधी हुई है, सारे संख्यात गुणाहीन कहेंगे, और एक पोजीशन ऐसी आएगी वो असंख्यात गुणाहीन हो जाएगी। उनमें जो आहारक द्विक का द्विचरम स्थिति कांडक है, यानी देखिए आहारक के बारे में एक बात हमने कल पढ़ी थी इसमें विशेष, कि अन्य प्रकृतियां तो मिथ्यात्व में जाने पर उद्वेलना होती है, पर आहारक द्विक का असंयम में जाने पर उसकी उद्वेलना चालू हो जाती है। जैसे मुनिराज है, आहारक शरीर का बंध किया है और वो ऊपर देवों में गए, सागरों की आयु है, पल्ले के असंख्यात भाग में ही उसके आहारक की उद्वेलना पूर्ण हो जाती है। ये विशेषता यहाँ हमने कल नोट की। पहले तो हमने ऐसा डिराइव किया था कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसका सत्व पल्ले के असंख्यात भाग ही बना रहता है, जबकि तीर्थंकर का सत्व पूरे 33 सागर तक है, नया बंध भी हो रहा है और इसका बंध नहीं है चौथे गुण स्थान में, तो जो है वो उद्वेलित हो जाती है। आगे बढ़ते देखो दूसरी लाइन नए पैराग्राफ की, उनमें जो आहार द्विक का द्विचरम स्थिति कांडक है उसका जो प्रदेश आग्रह अंतिम समय में परस्थान में संक्रांत होता है यानी पर प्रकृति रूप हो जाता है, वह जघन्य उद्वेलना संक्रम है यानी मिनिमम पॉसिबल यहाँ पर है। नहीं नहीं आहारक में ही बता रहे, आहारक प्रकृति में वही ऐसा विशेषण विशेषण होगा, तो हमने देखा ना विशेषण 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 कहाँ तक होता है, द्विचरम कांडक तक होता है, तो द्विचरम कांडक का जो उद्वेलना वाला जो है और संक्रमण का वो सबसे मिनिमम है। क्योंकि देखो हमने क्या देखा था उद्वेलना में क्या नियम है, यहाँ देखो पेज नंबर 418 पर देखो, नीचे से दूसरी लाइन फिर पढ़ती हूँ। अन्य प्रकृतियों में जो प्रदेशाग्र दिया जाता है वस्तुओं के उद्वेलना होती है तो क्या होता है कि स्थिति कांडक होते हैं, और स्थिति कांडक में बहुत सारा द्रव्य अपने ही निषेकों में नीचे दिया जाता है गुणित प्रमाण में, उसको संक्रमण नहीं कहेंगे, उसको तो कांडक घात कहेंगे, और पर प्रकृति रूप थोड़े थोड़े होते हैं, उसका प्रमाण बहुत अल्प है, तो अपने में दिया जाता है पहली फाली दूसरी फाली तीसरी फाली असंख्यात गुणा, और पर प्रकृति में विशेषण प्रति समय विशेषण दिया जाता है। और फिर पहले कांडक से दूसरे कांडक के निषेक भी कम है तो वो विशेषण वाला और ही विशेषण चला जाता है, तो द्विचरम कांडक के जो अंतिम फाली वो मिनिमम पॉसिबल उद्वेलना का प्रमाण है पर प्रकृति रूप होने वाला। उसके द्वारा संक्रांत हुआ उक्त प्रकृति का जो उस समय शेष कर्म है वह पल्लोपम के असंख्यातवे भाग से अपहृत होता है, यानी बाकी बचा हुआ उसका भाग और कितना है तो पल्ले का असंख्यातव भाग, परंतु सब कर्म अंगुल के असंख्यातवे भाग से अपहृत होता है। अब प्रकृति की प्ररूपणा करते हैं, ये आहार द्विक की बात यहां बताया पेज नंबर 419 लास्ट पैराग्राफ, आहार द्विक का उद्वेलना काल के भीतर उद्वेलन संक्रमण होता है, अंतिम स्थिति कांडक में गुण संक्रम होता है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि उद्वेलना शुरू होती है नहीं पर प्रकृति रूप होना उसको संक्रम कहते हैं उद्वेलना संक्रम, अब उसमें क्या हो रहा है कि स्थिति कांडक होते रहते हैं, स्थिति कांडक होते हुए एक एक फाली दूसरी फाली तीसरी फाली असंख्यात गुणाक्रम से अपने में ही स्वस्थान में ही दी जाती है, उसको उद्वेलना संक्रम नहीं कहा, पर उसी समय विशेषण विशेषण क्रम से पर प्रकृति रूप होता है उसको उद्वेलना संक्रम कहा है। ऐसे होते होते जो द्विचरम कांडक की पररूप होने वाली फाली वो सबसे जघन्य उद्वेलना संक्रम है, और अंतिम कांडक होता है पहले से कैसे कांडक का प्रमाण विशेषण विशेषण होता होता गया, विशेषण होता होता आधा हुआ आधा का आधा हुआ आधा का आधा हुआ, यानी संख्यात गुणाहीन होते थे असंख्यात गुणाहीन भी हो गए, पर अंतिम जो चरम सबसे अंतिम जो कांडक है तो वो तो असंख्यात गुणा बड़ा है, तो उसमें वो गुण संक्रमण वो तो सारा का सारा पर प्रकृति रूप हो रहा है, क्योंकि अंतिम कांडक स्वस्थान में देने से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए वहां ऑलरेडी प्रमाण भी बहुत है परमाणुओं का, क्योंकि स्थिति कांडक से उसी में आते रहे, अब वो पूरा एक बड़ा कांडक है वो पर रूप हो जाएगा, तो शुरुआत में गुण संक्रमण और अंतिम समय में सर्व संक्रमण। अब उसी की बात बता रहे देखो नीचे से दूसरी लाइन, आहार द्विक का उद्वेलन काल के भीतर उद्वेलन संक्रम होता है, अंतिम स्थिति कांडक में गुण संक्रम होता है, और उसमें ही अंतिम फाली का सर्व संक्रम होता है। ये समझ में आएगा आपकी बात, 420 पेज पर आना। उच्च गोत्र का मिथ्या दृष्टि से लेकर सासादन सम्य दृष्टि तक अधः प्रवृत्त संक्रम होता है, मैंने कहा आप नहीं थे, परंतु अधः प्रवृत्त संक्रम किसका, कौन से प्रकृतियों का होता है, कब होता है? तो जब तक उसका बंध होता है, यानी बंध विच्छित नहीं हुई है, उस गुणस्थान तक उसका अधः प्रवृत्त संक्रम होता है, आगे उसका संक्रम नहीं होता। किसका? उच्च गोत्र का। उच्च नीच गोत्र का होता है क्योंकि बंधने वाली उच्च गोत्र है, पर उच्च गोत्र का संक्रमण्य किसी में नहीं होगा क्योंकि उसको वो प्रतिग्रह प्रकृति का अभाव है, यानी जिसमें संक्रमित किया जाए वो बंधनी चाहिए, तो ऐसा कोई प्रकृति है नहीं। तो कहते कि आगे उसका संक्रम नहीं क्योंकि प्रतिग्रह प्रकृति का अभाव है। सात हाँ, इसीलिए सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उसका विध्यात संक्रम होता है। देखो सातवीं पृथ्वी के नारकी में क्या है, जब तक मिथ्या दृष्टि है उच्च गोत्र बनता ही नहीं, नीच गोत्र ही बन रहा है, तो वहां पर उसके लिए तो बंद नहीं, तो उसका विद्या संक्रमण पहले गुणस्थान से सातवें तक उसका होता है, तो यहाँ विद्या संक्रमण होगा। उसको तो बंद होगा, उसके उद्वेलना नहीं है हाँ, और उसका संक्रम भी नहीं है, परंतु लंबे काल तक नीच गोत्र ही बांधता रहा ना, उच्च गोत्र बांधता ही नहीं है। तेज कायिक और वायु कायिक जीव में उसका उद्वेलन संक्रम होता है, हमने देखा ना उद्वेलना होती मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपुरी और उच्च गोत्र की उद्वेलना होती, वहां उद्वेलन संक्रमण होता है क्योंकि वहां उद्वेलन के योग्य परिणाम पाए जाते हैं। अंतिम उद्वेलन कांडक में गुण संक्रम होता है, उसी की अंतिम फाली का सर्वसंक्रम होता है। एक एक प्रकृति लेकर बात बता रहे, पहले मैंने आर्क की बात बताई, अभी उच्च गोत्र की बात बताई। तीन संज्वलन, अभी अन्य नया ग्रुप लिया, आठवां ग्रुप लिया, ये पेज नंबर हमने वो पेज नंबर 410 पर ये फिगर बनाई थी ना, एक मिथ्यात्व के लिए तीन भागार थे, प्रकृति के लिए चार थे, ये 12 के लिए पांचों थे, ये पांचों में हमने अभी उद्वेलना की बात की थी। अब चार के लिए दो है, ये हमारा कितनी आठवां हुआ ना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठवां ग्रुप है। तो इसमें कौन से दो है, तो तीन संज्वलन और पुरुष वेद के अधः प्रवृत्त संक्रम और सर्व संक्रम, ये दो संक्रम होते हैं। यथा तीन संज्वलन कषायों और पुरुष वेद का मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण तक अधः प्रवृत्त संक्रम होता है, क्योंकि बंधने वाली में अधः प्रवृत्त संक्रम होता है। यदि उनका बंध रुक जाता, जैसे अनंतानुबंधी का पहले दो गुण स्थान में ही है, तो तीसरे से सातवें तक उसका विद्या संक्रमण बताया था, है ना? और अगर क्षपणा करता है तो अन्य बात होती है, उसकी बात अलग छोड़ दो। तो यहाँ तो बंध कहाँ तक है, तो नौवें गुणस्थान तक है, तो वहां तक उसका अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है, और इनके अंतिम कांडक की अंतिम फाली का सर्व संक्रम होता है। क्योंकि वो बनते बनते ही पूरी नष्ट हो जाती है ना, जब उसका बंध हो रहा है। हास्यरति अभी नया ग्रुप नौवा, वो भी चार प्रकृतियों का है, उसमें तीन प्रकार के संक्रमण होते हैं। हास्यरति भय जुगुप्सा के
नवे गुणस्थान में पुरुषवेद का जो संक्रमण हो रहा है वो संज्वलन में होगा,
सब संज्वलन है, संज्वलन क्रोध में, क्योंकि अनुपूर्वी संक्रमण है ना, अंतरकरण के बाद अनुपूर्वी संक्रमण होता है,
और उसके पहले
किसी में ही होता है,
किसी में भी,
परंतु वो तो ऑर्डिनरी संक्रमण है, उसके लिए कुछ हाँ देखो, हास्यरति भय जुगुप्सा के अधः प्रवृत्त संक्रम, बंध विच्छित्ति कहाँ है उसकी, आठवें के अंत में, हाँ तब तक अधः प्रवृत्त संक्रम है। फिर गुण संक्रम और सर्व संक्रम, ये तीन संक्रम होते हैं। यथा मिथ्या दृष्टि से लेकर अपूर्वकरण के अंतिम समय तक इनका अधप्रवृत्त संक्रम होता है। आगे अंतिम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली तक गुण संक्रम होता है और अंतिम फाली का सर्व संक्रम होता है। अब औदारिक नया ग्रुप 10 नंबर का, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ नारा सहनन और तीर्थंकर प्रकृति के अधप्रवृत्त संक्रम और विद्या संक्रम, ये दो संक्रम होते हैं। यथा औदारिक द्विक और प्रथम सहनन का मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्य दृष्टि तक अधप्रवृत्त संक्रम होता है, क्योंकि वहां पर उनका बंध देखा जाता है। असंख्यात वर्षायुष्क तीर्यंच और मनुष्यों में इनका विद्या संक्रम होता है, क्योंकि वहां देवगति और वैकृत शरीर ही बांधता है, तो इनका बंधन नहीं पाया जाता है, तो वहां पर उनका विद्या संक्रमण है, क्योंकि उनमें इनका बंधन नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का असंयत समय दृष्टि से लेकर अपूर्व करण तक अधप्रवृत्त संक्रम होता है, बंधने वाली है ना, अपने बंध तक उसका अधप्रवृत्त संक्रमण पाया जाता है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में उसका विद्यात संक्रम होता है, क्योंकि नहीं बनती है और सातवें गुणस्थान तक विद्या संक्रम है, क्योंकि वहां उसका बंध नहीं होता। वो तो एक अंतर्मूर्त के लिए होगा ना, जो नरक के सन्मुख है दूसरे तीसरे, फिर भी क्या होता है उसकी बात बताइए। अब कहते गुण संक्रम के द्वारा संक्रांत होने वाले प्रदेशाग्र का अवहार काल स्तोप है। अवहार काल है उसका जो भागार, भागार का प्रमाण, क्योंकि गुण संक्रमण है ना, तो भागार छोटा है तो बड़ा है वो। अधप्रवृत्त संक्रम के द्वारा संक्रांत होने वाले प्रदेशाग्र का अवहार काल असंख्यात गुणा है, यानी उससे भी अधप्रवृत्त वाला भागार है वो छोटा होगा, सॉरी भागार बड़ा होगा तो संख्या प्रदेशाग्र कम संक्रमित होगा। फिर से जहां भागार बड़ा तो वहां जो रिजल्ट कम आएगा ना, हाँ यहाँ भागार की अपेक्षा बात करें। विद्या संक्रम के द्वारा संक्रांत होने वाले प्रदेशाग्र का अवहार काल असंख्यात गुना है, यानी उसके संक्रमण से प्रदेशाग्र असंख्यात गुणे ही चले जाएंगे। यह अल्पभूत उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम भागहारों का है, न कि सब भागहारों का, क्योंकि विद्या संक्रम भागहार से अधप्रवृत्त संक्रम भागहार विशेष हीन पाया जाता है। यहाँ तो असंख्यात गुणा बताया है, तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट का प्रमाण की कंपैरिजन की, सर्वसाधारण नहीं, उसमें भी हीनाधिक होगा ना, जगन्य से उत्कृष्ट तक जो भेद होगे, तो सामान्य से कहते कि अधप्रवृत्त से वो विशेष अधिक है विद्या संक्रमण का भाग है, और यहाँ पर उसको असंख्यात गुणा कहा है, इसीलिए कहते ये उत्कृष्ट की अपेक्षा कथन किया हुआ है। शंका, यह कहाँ से जाना जाता है? समाधान, वह प्रत्याख्यानावरण लोभ के जघन्य संक्रम द्रव्य से, ये जघन्य आया, केवल ज्ञानावरण का जघन्य संक्रम द्रव्य विशेष अधिक है, इस आगे कहे जाने वाले अल्पभूतों से जाना जाता है। और यहाँ जो असंख्यात गुणा कहा वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट की कंपैरिजन के।
यहाँ पे प्रत्याख्यानावरण तो मौनीय की है, प्रत्याख्यानावरण मौनीय की प्रकृति है, और केवल
वो द्रव्य से कंपैरिजन करना है, कितना द्रव्य संक्रमित होता है उसकी बात है। प्रत्याख्यानावरण का जघन्य संक्रम द्रव्य कहाँ होगा? वो तो उत्कृष्ट हो जाएगा ना सर, उत्कृष्ट की अपेक्षा तो अधप्रवृत्त से विद्या संक्रम जो भागहार असंख्यात गुणा है, भागार असंख्यात गुणा यानी द्रव्य गुणा कम ही असंख्यात गुणाहीन होगा, परंतु यहाँ जघन्य की कंपैरिजन करते हैं तो विशेष अधिक है, संक्रम द्रव्य विशेष अधिक है।
जघन्य संक्रमण कभी होगा क्या आप?
अभी स्वामी बताएंगे। यहाँ स्वामित्व की प्ररूपणा की जाती है वह इस प्रकार है। मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक सातवीं पृथ्वी से मरकर तिर्यंच हुआ है, उसके आवली कालवर्ती तद्भवस्थ होने पर मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। क्योंकि जब सत्ता में मैक्सिमम, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम भागार कितना भी क्यों ना हो, परंतु प्रदेश संक्रम रिलेटेड टू जितने अधिक सत्व होगा तो उतने ही भागाकार होते हुए अधिक द्रव्य संक्रमित होगा। तो जो गुणित कर्मांशिक वाला है सातवीं पृथ्वी से अंतिम समय में उत्कृष्ट बंध करके निकला है और आवली में जहाँ उत्पन्न हुआ है वहाँ आवली काल होने पर उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम है। शेष चार ज्ञानावरण वैसे ही समझना, वहां पर भी उनका भी चार दर्शनावरण पांच अंतराय प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम के स्वामित्व की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। जहाँ सत्ता में अधिक द्रव्य है तो उसी भागार से अधिक प्रदेश उसके संक्रमित हो जाएगा। निद्रा और प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम, निद्रा और प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेश बंद कब कहेंगे हम? वो तो जब देखो देखो मोहनीय जब पहले गुणस्थान में 22 में बंटवारा है, दूसरे में 21 में बंटवारा है, तीसरे चौथे में 17 का बंटवारा है, क्योंकि स्थान वृद्धि त्रिक का जब बंध विच्छित हो जाएगी तो 6 में बंटवारा हो जाएगा उसका। तो कहाँ तक? जब तक उसका बंध होता है। अब बताएंगे यहाँ पर निद्रा और प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, वो तो अंत में लिया। वह गुणित कर्मांशिक चरम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के होता है, क्योंकि उसके बंध विच्छित्ति हुई तो उसके बाद उसका जो वहाँ संक्रमण तो चालू है ना, और वो कब तक? तो अन्य कोई प्रकृति बंद रही तब तक। कौन सी बंद रही? चार दर्शन और बंद रही है तो उसमें उसका संक्रमण होगा। स्थान वृद्धि त्रय का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? वह सर्व संक्रम द्वारा स्थान वृद्धि त्रय की अंतिम फाली को संक्रांत करने वाले गुणित कर्मांशिक अनिवृत्तिकरण क्षपक के होते, जहां वो 16 प्रकृतियों का क्षय होता है उसमें 3 तो स्थान वृद्धि की है, तो उसका अंतिम जो फाली संक्रमित होती है सर्व संक्रम जितने उतने उतने सारे वो मैक्सिमम होगा। सातावेदनीय का उत्कृष्ट, नहीं नहीं वो तो दसवें, क्योंकि उसमें संक्रमण है ना, उसमें बंधने वाली प्रकृति चाहिए ना, यश कीर्ति नहीं, दर्शनावरण चार है। संक्रमण कब कहेंगे? वो सजातीय का बंध होना चाहिए ना, हाँ तो दसवें तक ही है उसमें पढ़ो।
संक्रमण तो हमने दसवें गुणस्थान तक,
दसवें गुणस्थान तक ही है क्योंकि वहाँ बंद है ना कुछ ना कुछ, हाँ क्योंकि संक्रमण की बात चल रही है यहाँ पर, वो स्वस्थान रूप से या जिस किसी रूप से निकल जाती है उसको संक्रमण में नहीं गिना है। संक्रमण यानी अन्य प्रकृति रूप होते हैं ना, तो उदयावली के ऊपर के निशेक अन्य प्रकृति में संक्रमित होते हैं।
देखो उदय बताया है तो वो स्वरूप से ही,
स्वरूप से आए पर रूप से आए, उसको संक्रमण नहीं, क्योंकि उदयावली में एंटर होने के बाद उसको संक्रमण नाम नहीं देते। द्विचरम निषेक उदय में आते आते अन्य रूप होकर निकल गया, ऐसा हो सकता है। देखो सातावेदनीय का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक सातवीं पृथ्वी से मरकर तिर्यंच हुआ है, जिसने उसी समय में सातावेदनीय का बंध किया है तथा जिसने तत्प्राज्ञ उत्कृष्ट साता बंधक काल को बीताकर फिर असातावेदनीय का बंध किया है, यानी साता विधि मैक्सिमम काल तक बांधी उसने और बाद में असाता का बंद करने लगा, क्योंकि जब बंद करता है अन्य प्रकृति का तभी उसमें संक्रमण बताएंगे। उसके बंधावली के बीतने पर उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, क्योंकि जब तक बंधावली नहीं तब तक संक्रमण वगैरह कुछ नहीं चालू होता। असाता वेदिनी के प्रकृत स्वामित्व की प्ररूपणा निद्रा के समान है, यानी उसका संक्रमण कहाँ बताया, दसवें में, यहाँ साता का बंध है ना वहां पर, इसलिए वहां पर संक्रमण तो वहां तक ही बताया। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, ये तो दर्शनमणि के क्षपणा में होगा, है ना। वह सर्व लघु काल में दर्शनमणि की क्षपणा करते हुए अनिवृत्ति करण में, यानी तीन करण में से जो अनिवृत्ति करण है उनमें सर्व संक्रम द्वारा मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम फालियों को संक्रांत करने वाले गुणित कर्मांशिक के होता है। मैंने पहले मिथ्यात्व की अंतिम फाली संक्रमित होगी, फिर थोड़ी देर में उसकी। छोटा काल इसलिए लिया है, लंबे काल तक तो असंख्यात गुना असंख्यात गुना करते करते अंतिम फाली का नंबर आए, इसलिए छोटे काल में कर दिया उसने। सम्यक तो प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, अभी संक्रमण लिया ना, उसमें प्रदेश उदय नहीं कहा, संक्रमण लेना है, उल्टा वो कब होता है उसका, मिथ्यात्व गुणस्थान में होगा। जो सातवीं पृथ्वी का नारकी गुणित कर्मांशिक आयु में अंतर्मूर्त शेष रहने पर सम्यक्त्व को प्राप्त हो, उत्कृष्ट गुण संक्रम काल में सम्यक्त्व को पूर्ण करके मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, क्या कहना चाहते हैं? सातवीं पृथ्वी का नारकी आयु के शेष रहने पर सम्यक दृष्टि हुआ, यानी वो तो उपशम सम्यक्त्व किया, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि हुआ, तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले अंतर्मूर्त में गुण संक्रमण होता है, यहाँ वो गुण संक्रमण का काल भी बढ़ा लिया, यानी सम्यक प्रकृति का अधिक द्रव्य तैयार हुआ, अब वो जीव फिर मिथ्यात्व में गया, ऐसा लेना है। तो जब वो मिथ्यात्व में जाता है उस प्रथम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है।
सर्व संक्रमण होता है उद्वेलना में,
किसमें?
मिथ्यात्व रूप।
नहीं, फिर से प्रश्न पूछो,
सम्यक प्रकृति का सर्व संक्रमण भी होता
कब होता है?
उद्वेलना में।
उद्वेलना में कब?
जब सम्यक तो प्रकृति नष्ट होने वाली है,
वही तो अंतिम, तो पल्ले उसके लिए पल्ले का असंख्यात भाग चला जाता है, तब तक प्रदेश भी कम हो जाएगी ना।
तो यहाँ पे जो संक्रमण बताया ये उत्कृष्ट बताया,
वही तो कह रहे हैं। अभी क्या पढ़ा कि सात्विक गुणित कर्मांशिक हुआ, उसने सम्यक तो प्राप्त किया, गुण संक्रमण मैक्सिमम काल तक रहा, तो सम्यक प्रकृति की जो प्रदेश है वो मैक्सिमम हुए, वो जो मिथ्यात्व में आया, हाँ वहाँ उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम है, बाद में वो विशेषण विशेषण होता चला जाएगा। हमने देखा था ना उद्वेलना का स्वरूप क्या देखा था, अभी देखो निकालो पेज नंबर जो अभी हमने शुरुआत की थी ना 418 में, यानी शुरुआत से क्या होता है उसका अपना स्थिति कांडक होता है, पर परप्रकृति में जो पहले समय में ज्यादा है, दूसरे में विशेषण विशेषण विशेषण, और जाके वो द्विचरम कांडक में वो एकदम जघन्य हो जाता है वहां पर। अभी 423 पर अनंतानुबंधी कषायों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, जो सातवीं पृथ्वी में स्थित गुणित कर्मांशिक नारकी जीव सर्वजघन्य अंतर्मूर्त मात्र आयु के शेष रहने पर अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना को प्रारंभ करके, देखो कैसे कैसे परिणाम होते होंगे, सर्व संक्रम द्वारा अनंतानुबंधी चतुष्क की अंतिम फाली को संक्रांत कर रहा है। अभी वो चौथे गुणस्थान वाला है, वो विसंयोजना कर रहा है, तो उसके परमाणु किसमें जा रहे हैं, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संज्वलन और वहां बंधने वाली जो नौकशाएं होगी उसमें, तो जो अंतिम फाली उसकी जो वो सर्व संक्रमण की है वो उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम है। आठ कशाओं का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक अनिवृत्तिकरण क्षपक सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होकर आठ कशाओं की अंतिम फाली को सर्व संक्रम द्वारा संक्रांत करता है, उसके उक्त आठ कशाओं का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। अब नपुसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक देव ईशान कल्प में, ये पहले भी बात बहुत बार आई थी ना, ईशान कल्प में वो नपुसक वेद का जो कोई संक्लेश परिणाम से एकेंद्रिय प्रायोग्य बंध करता हुआ नपुसक वेद को बार बार बांध कर वहां से च्युत हो स्त्री अथवा पुरुष उत्पन्न होता है और तत्पश्चात मास पृथक्त्व अधिक आठ वर्षों के बीतने पर स्त्री या पुरुष वेद के साथ सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत हो सर्व संक्रम द्वारा नपुसक वेद की अंतिम फाली को संक्रांत करता है, उसके नपुसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। देखो देखो क्या कहना चाहते हैं, ये तीन टाइप अलग है ना। पुरुष वेद से चढ़ने वाला पहले नपुसक वेद की क्षपणा करता है, फिर स्त्री वेद की, फिर पुरुष वेद की। स्त्री वेद की क्षपणा करने वाला पहले नपुसक वेद की, फिर स्त्री वेद की, फिर बाद में जाके पुरुष वेद की। और नपुसक वेद की क्षपणा करने वाला पहले नपुसक की स्टार्ट तो करता है, फिर जहां स्त्री वेद की क्षपणा प्रारंभ होती है वहां स्त्री और नपुसक वेद दोनों की क्षपणा चालू करता है, और एट ए टाइम दोनों की क्षपणा पूरी होती है, और बाद में वो पुरुष वेद की करता है। यानी वो नपुसक वेद सहित चढ़ने वाले के लंबे काल तक चलता है, इसलिए स्त्री या पुरुष वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाला लिया, परंतु उसके पहले उसने बांधा अधिक था इसलिए ईशान कल्प वाला ले लिया। यानी वो बारंबार अधिक संक्लेश परिणाम किया है, नपुसक वेद को बारंबार बांधा है, क्योंकि एक इंद्रिय जाति बांधता है तो नपुसक वेद बांधेगा उसके साथ। अब स्त्री वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक असंख्यात वर्षायुष्क जीवों में उत्पन्न होकर सर्व लघु काल स्वरूप पल्लवपम के असंख्यात वे भाग में स्त्री वेद को पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होता हुआ जघन्य देव स्थिति के साथ देव उत्पन्न हुआ है 10,000 वर्ष में, फिर से यानी असंख्यात वर्षायुष्क जीवों में उत्पन्न हुआ है और सर्व लघु काल स्वरूप पल्लवपम के असंख्यात वे भाग में स्त्री वेद को पूर्ण करके, यानी स्त्री वेद को उसको पूर्ण पूर्ण करके उसका क्या है?
स्त्री वेद की जुड़ गया ना, असंख्यात वर्षायुष्क,
यानी उसने ऊपर जैसे बताया था ना, जैसे वहां नपुसक वेद को उसने बांधा था वैसे स्त्री वेद को ज्यादा बांधा था, क्या हुआ? स्त्री वेद को पूर्ण करके
वो तो स्त्री वेद ही जीव बताया ना,
यानी स्त्री वेद का उसने उत्कृष्ट बंध किया है।
ऊपर तो चलत लिखा है,
नहीं नीचे हम फिर देखेंगे विशेषार्थ में बाद में देखेंगे। देखो पहले में पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ और जघन्य देव स्थिति के साथ देव उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात वहां से देव में ही जाना है ना, क्योंकि वो नियम से देव में जाते हैं, वहां से च्युत होकर सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होकर, यानी वो भूमि में इसलिए भेजा था कि देखो नपुसक वेद का मैक्सिमम संचय करने के लिए ईशान में भेजते और श्री वेद का करने के लिए वहां भूभूमि में। और बाद में सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होकर यानी आठ वर्ष और कुछ बाद जब वह स्त्री वेद की अंतिम फाली को सर्व संक्रम द्वारा पुरुष वेद में संक्रांत करता है, क्योंकि सपना का यही प्रोसेस है। स्त्री वेद को पूर्ण करता है ऐसे ही लिखा है, स्त्री वेदी ऐसा स्पेसिफिकली बताया नहीं। तब उसके स्त्रीवेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। विशेषार्थ यहाँ बताया था ना, वहां से सर्व लघु काल स्वरूप पल्लवम के असंख्यात विभाग में, तो कहते विशेषार्थ यद्यपि तत्वार सूत्र आदि अधिकांश ग्रंथों में भोग भूमियों में अकाल मृत्यु यानी कदलीघात मरण का प्रतिषेध किया गया है, तथापि कुछ आचार्य वहां अकाल मरण को भी स्वीकार करते हैं। इसी मतभेद के अनुसार यहाँ भोगभूमियों में अपमृत्यु को स्वीकार कर उपर्युक्त स्त्रीवेद के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम को घटित किया गया है। यहाँ चूर्णी सूत्रकार यति ऋषभाचार्य का क्या अभिमत है यह ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उन्होंने असंख्य जब असाऊ थिवेदम पूरे दून इतना मात्र निर्देश किया है, पल्लवपम के असंख्यात वे भाग मात्र सर्व लघु काल का निर्देश नहीं किया। परंतु एक्चुअली वहां की जघन्य आयु तो करोड़ पूर्व प्लस एक समय तो हो ही सकती है ना, तो इसका भी कुछ ख्याल नहीं आया। कर्म प्रकृति आदि श्वेतांबर ग्रंथों में यह अभिमत अवश्य पाया जाता है। प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य मलयगिरी ने बताया है स्त्री वेद का यह उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम इसी युक्ति से बन सकता है, अतः इसी युक्ति का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य युक्तियां चिरंतन ग्रंथों में देखी नहीं जाती। यथा उसके लिए उन्होंने उद्धरण दिया है, यह एवं एव स्त्रीवेदस्य उत्कृष्टम आपूर्णम उत्कृष्टश्च प्रदेश संक्रमः केवल ज्ञानेन उपलब्धो न अन्यथा इति एष एव युक्ति अत्र अनुसर्तव्या न युक्ति अंतराणि, यानी दूसरी युक्ति नहीं है। युक्त्यंतराणां चिरंतन ग्रंथेषु अदर्शनतः यानी अन्य वृत्ति अन्य जो युक्ति है वो चिरंतन ग्रंथ है ने जो सनातन ग्रंथों में नहीं पाई जाती, निर्मूलतया अन्यथापि कर्तुम अशक्यत्वात्। यानी स्त्रीवेद का उत्कृष्ट प्रदेश बंध या संचय कहेंगे तो असंख्यात वर्षायुष्क वालों में घटित करते हैं, यानी वहां स्त्रीवेद का उत्कृष्ट बंध कर रहे, बस इतनी बात है। पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, देखो क्या कहना चाहते हैं, वहां देवगति का ही बंध हो रहा है यानी नपुंसक वेद बनता ही नहीं है, तो बंध तो स्त्रीवेद का और पुरुष वेद का होगा, और पुरुष वेद स्त्रीवेद का वैसे बंधक काल बड़ा है पुरुष वेद के बंधक काल से, इसलिए भी वहां उसका संजय अधिक बताया। और फिर केवल बंधने से कम आयु में क्यों निकाला वहां से, क्योंकि फिर वहां पर निकल भी जाएंगे ना परमाणु, इसलिए उसको वहां से जल्दी वहां से, क्योंकि उसकी क्षपणा जल्दी करानी है, इसलिए वहां पर भी छोटी आयु ली, देव की भी छोटी आयु ली और जल्दी क्षपणा करने वाला जीव लिया, क्योंकि उत्कृष्ट संचय करके वो जल्दी में जल्दी मोक्ष जावे, इस तरह से वो सब बातें युक्ति उन्होंने यानी वो एक सोच लिया कि इस तरह से हो सकता है। अब पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, जिसने ईशान कल्प के देवों में नपुंसक वेद को पूर्ण किया है। अभी पूर्ण किया का अर्थ क्या होता है, अरे बांधा है, पूर्ण किया का अर्थ है मैक्सिमम बांधा है उसने, वैसे स्त्रीवेद को पूर्ण किया है वो स्त्रीवेदी हुआ ऐसा उसका अर्थ नहीं था, स्त्रीवेद को मैक्सिमम बांध के उसका संचय किया है। देव में तो कोई नपुंसक वेदी होता नहीं है, तो पूर्ण किया का अर्थ क्या है, बांधा है उसने, क्योंकि बात बताई थी ना बहुत बार संकलेश करके एकेंद्रीय के साथ नपुंसक वेद बांधा है। तत्पश्चात असंख्यात वर्षायुष्कों में स्त्रीवेद को पूर्ण किया है, यानी देव में से आएगा, मनुष्य तिरेच होगा और फिर वो तो पोहुवे में जाएगा, वहाँ श्रीवेद का भी मैक्सिमम लिया उसने। तत्पश्चात मरण को प्राप्त होकर जो जघन्य देव स्थिति से उत्पन्न हुआ है, वही 10,000 वर्ष की आयु। तत्पश्चात मरण को प्राप्त होकर मनुष्य होता हुआ सर्व लघु काल में अन्यतर लिंग के साथ क्षपणा में उद्यत होता है। उसके जब तक सर्व संक्रम द्वारा पुरुषवेद संक्रांत होता है, तब तक पुरुषवेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। क्या कहना चाहते हैं? ये अन्य वेद के साथ श्रेणी चढ़ने वाला जीव लिया, उसमें क्या होता है, पहले नपुंसक वेद का पूरा पुरुष वेद में आता है, स्त्री वेद का भी पूरा द्रव्य पुरुष वेद में आता है, और वहाँ उसका जो संक्रमण है वो उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता रहता है। इसीलिए पहले उसको ईशान स्वर्ग में नपुंसक वेद को मैक्सिमम संचय कराया, फिर कालांतर से भूभूमि में जाकर स्त्री वेद का उत्कृष्ट संचय कराया, फिर मनुष्य ये देव की आयु करके फिर छोटी आयु करके मनुष्य में आकर क्षपणा की, और क्षपणा में पुरुष वेद सहित नहीं चढ़ा, श्रीवेद नपुंसक वेद सहित चढ़ा, तो उसका सब द्रव्य इसमें आ गया। तो इसका अपना द्रव्य मैक्सिमम हुआ। यानी वो सर्व संक्रम होने तक इसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। ये क्रोध में जाएगा। छह नौ कषायों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक, वो गुण हुआ गुणित कर्मांशिक सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होकर जब सर्व संक्रम द्वारा छह नौ कषायों की अंतिम फाली को संक्रांत करता है, तब उसके उनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। संज्वलन क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो ईशान कल्प के देवों में नपुंसक वेद को पूर्ण करके असंख्यात वर्षायुष्कों में स्त्री वेद को पूर्ण करता है, फिर स्त्री वेद के पूर्ण हो जाने पर जो सम्यक्त को प्राप्त करके तत्पश्चात पुरुष वेद को पूर्ण करता है, समय दृष्टि देकर पुरुष वेद को भी मैक्सिमम बांधा उसने, फिर पुरुष वेद के पूर्ण हो जाने पर मिथ्यात्व को प्राप्त होकर तत्पश्चात मृत्यु को प्राप्त होता हुआ जघन्य देव स्थिति से उत्पन्न होता है। अब देव में से फिर मनुष्य में लाया, वहां से च्युत होकर जो अष्टवर्षीय मनुष्यों में उत्पन्न हो 8 वर्ष का होता हुआ संयम को प्राप्त होकर अंतर्मूर्त काल में क्षपणा में उद्यत होता है, उसके जब संज्वलन क्रोध सर्व संक्रम द्वारा संक्रम को प्राप्त होता है। क्योंकि क्या किया है, तो उसने श्रीवेद को मैक्सिमम बांधा है, नपुंसक वेद को मैक्सिमम बांधा है, और सम्यक दृष्टि होकर पुरुष वेद को भी मैक्सिमम बांधा है। अब वेदों के मैक्सिमम परमाणुओं के साथ क्षपणा क्षपक श्रेणी चढ़ी है उसने, तो हाँ, और वहाँ संयमी भी हो गया, और वो जल्दी में उसने क्षपक श्रेणी चढ़ ली। तो पहले वो सारे नपुंसक वेद के परमाणु पुरुष वेद और पुरुष वेद का सारा ही क्रोध में आ जाएगा, यानी क्रोध का मैक्सिमम हो जाता है। आपको याद होगा कि उसमें कितना गुणा हो जाता है, वो तो 12 संग्रह कृष्टि की थी, आपको याद होगा, हर एक की 4 3 3 क्रोध की 3 इसकी 3 उसकी 3, तो पहले में क्रोध के पहले में पूरा वो अन्य सारा द्रव्य उसमें आएगा, यानी 12 नौकषाय और 12 कषाय में अगर हमने देखा था तो पूरा का उसका 13 प्रमाण हो जाता है क्रोध का, फिर अंतिम संग्रह कृष्टि में उसका 15 हो जाएगा, यानी वो बहुत बड़ा प्रमाण हो जाता है उसका, तब उसका सर्व संक्रमण होगा मान में। क्रोध का उदय होना चाहिए। हाँ,
क्रोध के उदय साथ जो चढ़ेगा
चढ़ेगा जब संज्वलन क्रोध सर्व संक्रम द्वारा संक्रम को प्राप्त होता है। यही जीव जब सर्व संक्रम द्वारा संज्वलन मान को संक्रांत करता है, तब उसके संज्वलन मान का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। ऐसा ही ना, वो तो क्रोध का मान में आया, मान का माया में आया, इस तरह से चलेगा। यही जीव जब सर्व संक्रम द्वारा संज्वलन माया को संक्रांत करता है तब उसके संज्वलन माया का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। संज्वलन लोभ का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? अब किसी भी चढ़ो तो लास्ट में तो लोभ में आने वाला है। जो गुणित कर्मांशिक सर्व ह्रस्व काल में यानी लघु काल में चार बार कषायों का उपशम करके सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होता हुआ जब अकृत अंतरकरण रहने के यानी अंतरकरण किया नहीं है ऐसा है अंतिम समय में संज्वलन लोभ को संक्रांत करता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, अंतरकरण के बाद संज्वलन लोभ का तो संक्रमण होता नहीं है क्योंकि अनुपूर्वी संक्रमण शुरू होता है तो लोभ का और किसी में संक्रांत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो वो कब संक्रांत हो सकता है? जब तक अंतर किया नहीं तब तक। इसलिए क्या क्या लिया देखो, पहले गुणित कर्मोशिक लिया और चार बार कशांक ने एक बहु में तो होता नहीं है परंतु जितना मिनिमम काल में हो सकता है ऐसे चार बार कशांक को उपशमाया। फिर क्षपणा में उद्यत हुआ और जब तक उसने अंतरकरण नहीं किया है उसके अंतिम समय में संज्वलन लोभ को संक्रांत करता है तब उसके संज्वलन लोभ का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। चार बार उपशम श्रेणी चढ़ा वो दो भाव लेने हैं उसके मनुष्य के, उसके बीच में जो देव का करना है तो करो नहीं होना है तो नहीं करो, बीच में मिथ्या तो में रखो तो फिर दोबारा आ सकता है वो जल्दी में जल्दी, इसलिए सर्व लघु काल ले लिया उसने। यानी उपशम करने से मेरे ख्याल से वो स्थिति कांडक वगैरह होने से नीचे के निशेकों में द्रव्य अधिक आया होगा और उसका भी संक्रमण करता है तो उसमें एट ए टाइम ज्यादा संक्रमित हो जाएगा। अभी 427 पर आना, चारों ही आयु कर्मों का प्रदेश संक्रम नहीं होता क्योंकि आयु में तो प्रकृति एक प्रकृति दूसरे रूप होती नहीं है। नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक पूर्व कोटि पृथक्त्व काल तक बंध करता हुआ मनुष्य व तिर्यंचों में स्थित रहता है पश्चात क्षपणा में उद्यत होकर जब वह सर्व संक्रम द्वारा नरक गति और नरगति प्रायोगन पूर्वी की अंतिम फालियों को संक्रांत करता है तब उसके उन दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। देखो इसमें बात यह है कि उसमें उत्कृष्ट प्रदेश उसके सत्ता में होना चाहिए और वो यह तो क्षपणा की बात भी, नवे गुणस्थान में जब 16 प्रकृतियों का क्षय होता है तो उसमें से नरगति नरगत्यानुपूर्वी भी वहां पर होती है तब उसका उत्कृष्ट संक्रम होगा।
अंतिम फालियों बताए तो सब फालियां लेनी पड़ेगी,
सब फालियां ने अंतिम फाली नरगति की अलग और प्रायोगानुपूर्वी की अलग दो की है इसलिए अनेक वचन दिया। तिर्यक गति और तिर्यक गति प्रायगण पूर्वी का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक सातवीं पृथ्वी से निकलकर और समयाविरोध से समय अविरोध यानी आगम से अविरोध रूप से समय यानी आगम मनुष्यों में उत्पन्न होकर आगम से अविरोध कैसा? क्योंकि पहले में पहले वो तिर्यंच में आ जाएगा फिर मनुष्यों में आएगा। सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होता है यानी सातवीं पृथ्वी के बाद कोई पंचेंद्रिय का भव करके लघु काल में मनुष्य हुआ छोटी आयु लेकर क्षपणा जल्दी में जल्दी की वह जब इनकी अंतिम फाली को सर्व संक्रम द्वारा संक्रांत करता है। देखो नरक गति के लिए क्या किया था, गुणित कर्मोशिक तो लिया था पर नरक गति में तो उसने नरक गति बांधी नहीं थी, नरक में नरक गति बांधी नहीं थी तो पूर्व कोटि पृथक्त्व तक मनुष्य और तिर्यंचों में नरक गति का बंधक किया था और बाद में वहां उत्पन्न कराया था उसको यानी उसका संचय करके फिर उसको क्षपणा की थी। अब तिर्यंच गति के लिए सातवें नरक में था गुणित कर्मोशिक था तो उसने बहुत सारा तिर्यंच गति का द्रव्य इकट्ठा कर ही दिया था, अब वो एकाद भव करके मनुष्य में आएगा और क्षपणा करेगा तब जब वो तिरंज गति की भी क्षपना होगी वह उसका सर्व संक्रमण में अंतिम फाली में उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। मनुष्य गति और मनुष्य गति प्राय ज्ञान पूर्वी का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक सातवीं पृथ्वी में प्रारंभिक अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त होकर सर्व निरुद्ध अर्थात आयु में अंतर्मूर्त शेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है, फिर वहां से निकलकर जो तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ है, उसके तिर्यंच होने के प्रथम समय में मनुष्य गति और मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। वो क्या कहना चाहते हैं? यानी गुणित कर्मांशिक जीव लिया, सातवीं पृथ्वी में जल्दी से जल्दी सम्यक दृष्टि हुआ और अंतिम अंतर्मूर्त तक सम्यक दृष्टि रहा, तो उसने 33 सागर कुछ कम तक मनुष्य गति बांधी है, यानी उसकी सत्ता में मनुष्य गति पड़ी है, और फिर मिथ्या तो में वहां से तिरंच में उत्पन्न हुआ और वहां उस तिरंच होने के प्रथम समय में मनुष्य गति का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, क्योंकि वहां तिरंच गति बांध रहा है तो मनुष्य गति का संक्रमण होगा उसमें। उस समय बंधने वाली में संक्रमित होता है ना, जो कुछ बांध रही है उसमें सब में वो संक्रमित होता है। अकेली गति ही चाहिए ऐसी बात नहीं है। देवगति देवगति प्राज्ञान पूर्वी वैक्रियक शरीर वैक्रियक शरीर अंगोपांग वैक्रियक बंधन और वैक्रियक संघात का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक जीव मनुष्यों व तिर्यंचों में इन प्रकृतियों की पूर्व कोटि पृथक्त्व तक बांध कर क्षपणा में उद्यत होता है, जैसे नरक गति के लिया था वैसे देवगति को भी लिया, उसके जब परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, ये कहाँ होते है तेजल? परभविक यहाँ कोई ना कोई गति बनती है। पहले गुणस्थान से कहाँ तक गति का बंध हो रहा है? वो आठवें के छठे भाग तक, वही परभविक नाम कर्म। आगे केवल यश कीर्ति बनती, वो परभविक नहीं कहलाती, उसमें भव संबंधी कोई प्रकृतियां नहीं है, ये इसका अर्थ होता है। बंध विच्छित इतनी आठवीं के छठे भाग, तब उसके पश्चात यानी वहां तक बांधी थी ना उसने, बंधावली के व्यतीत होने पर, यानी वहां पर अंत में वो देवगति वगैरह बांधी थी उसने, और बंधावली व्यतीत होने पर इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। अब किसमें संक्रम होगा है? बन रही है क्या मनुष्य गति? यश कीर्ति में चलेगा, बंधने वाले में उसका संक्रमण होता है, और ये अपूर्वकरण के ऊपर रहने वहां अभी गुण संक्रमण होगा। हमने देखा ना, बनती है तब तक अधपर संक्रमण है, बाद में गुण संक्रमण होता है अपूर्वकरण के ऊपर। आगे 429 नहीं 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 बंधावली होते ही, बंधावली के व्यतीत होने पर उसमें लिखा है ना, अभी क्या पढ़ा हमने, बंध विच्छित्ति होने के एक आवली के पश्चात, क्योंकि तब उसके मैक्सिमम वहां है ना उसके प्रदेश। अब जितना संक्रमण होता रहेगा उसके प्रदेशों की संख्या कम होगी, तो बाद में उसके कम प्रदेश संक्रमित होने लगेंगे। आहार शरीर अंगोपांग, आहार शरीर बंधन और आहार शरीर संघात का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जिस गुणित कर्मांशिक जीव ने चिरसंचित इन चार प्रकृतियों के साथ चार बार कषायों का उपशम किया है और तत्पश्चात जो क्षपणा में उद्यत हुआ है, उसके परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति हो जाने के पश्चात आवली मात्र काल के बीतने पर उक्त चार प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है उसका। औदारिक तेजस्व कारमान शरीर तथा उनके अंगोपांग बंधन और संघात की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। मति ज्ञानावरण को कहाँ लिया था? वो तो गुणित कर्मांशिक से आया था ना। नहीं, पेज नंबर 421, नीचे से चौथी लाइन। मति ज्ञानावरण का सातवें पृथ्वी से मरकर तीर्यंच हुआ है और आवली कालवर्ती, यानी अंत समय तक बंद किया था ना उसने। अब यहाँ ये भी औदारिक तेजस कारमान, इसका भी गुणित कर्मांशिक वाले की उसका उत्कृष्ट संचय हुआ है उसका। तो वहां वहां से निकलकर आवली काल बीतने पर इसको ले लेना है। हाँ, तिरवेंच होना उसमें आवली काल बीतने पर। प्रशस्त संस्थान, प्रशस्त सहनन, सुभग आदेय और सुस्वर का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक 266 सागरोपम काल तक सम्यक्त्व का पालन करके, क्योंकि जब तक समय दृष्टि है तो इन्हीं का बंद कर रहा है, तो सम्यक्त्व 266 सागर थे तब तक उसने, पहले गुणित कर्मांशिक था और उसने वो लंबे काल तक इन प्रकृतियों को बांधा और चार बार कशांक को उपशमा करके सपना में उद्यत हुआ है। उसके परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति हो जाने के पश्चात आवली मात्र काल के बीतने पर उनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। औदारिक का भी वहां पर लिया क्योंकि उसका गुण संक्रमण होता है ऐसा, क्योंकि तब तक तो विद्यात होता होगा ना और बाद में उसका गुण संक्रमण होता है। कीप किया क्या?
कीप किया।
हाँ, और फिर डायरेक्ट खाली उसको ऑन कर दो। वापस वो गो लाइव में जाना। हाँ देखो, अभी हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पर। उसने उसी का बंद किया है, प्रशस्त प्रकृतियों का बंद किया है। देखो देखो, औदारिक तेजस कारमान का तो वो सातवें नरक से निकला हुआ लिया। हाँ, और प्रशस्त संस्थान सहनन सुभग आदेय, जब तक समय दृष्टि है तो इसी को बांधता रहा था। ये सभी है ना सहनन वगैरह। हाँ, एक एक अलग लेना, क्योंकि सहनन जो है, जब तक मनुष्य मनुष्य में था तो सहनन को नहीं बांध रहा है ना, देवगति बांध रहा है। और देव है 266 सागर तक, तो अभी नारकी में नहीं आएगा। फिर से देखो, ये किसकी बात चल रही है? पहले इन सबके लिए कॉमन कथन है और बाद में स्पेसिफिक बताएंगे। तो प्रशस्त संस्थान, प्रशस्त सहनन, एक एक एक, तीनों प्रशस्त नहीं होते, छह में से पहला ही प्रशस्त है। तीनों प्रशस्त नहीं है, समचतुर संस्थान और वज्रषभ नाराज सहनन। हाँ, सुभग आदे और सुस्वर, उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? तो जो गुणित कर्मांशिक, पहले गुणित कर्मांशिक था और फिर 266 तक समय दृष्टि रहा, तो इसी इन्हीं का बंद करता रहा। अभी सहनन को छोड़ो, वो कंटिन्यूस नहीं बांध रहा था, संस्थान तो वही बांध रहा था। और चार बार कशांक को उपशमा कर सपना में उद्यत हुआ है। उसके परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति हो जाने के पश्चात आवली मात्र काल के बीतने पर उनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। विशेष इतना है कि वज्रषभ नारायण सहनन का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम अंतिम देव भव के अंतिम समय में होता है, क्योंकि वहां उसका संचय है और बाद में उसका बंध नहीं होने वाला है। नया मनुष्य में आता है तो देवगति के साथ उसका बंध नहीं होगा, इसलिए उसका अभी वहीं पर उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम बताया, क्योंकि बाद में उसके परमाणु कम होने वाले। तो ये उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम की बात अपनी चल रही है। हाँ, अब पेज नंबर 430 पर आते हैं। प्रशस्त ध्रुवबंदी नाम कर्मों का सम्यक्त्व काल सबसे रहस्व करना चाहिए, यानी छोटा करना चाहिए, क्योंकि ध्रुवबंदी है ना, तो बनती रहती है। अभी ये कौन सी ली थी हमने, पहला सहनन पहला, वो तो ध्रुवबंदी नहीं थी, ऑप्शनल थी, प्रतिपक्ष वाली थी। ये प्रशस्त ध्रुवबंदी नाम कर्मों का जो सम्यक्त्व काल है सबसे रहस्व करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना गुणितत्व बन नहीं सकता। चार बार कषायों को उपशमा कर जो क्षपणा में उद्यत होता है उसके परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति के पश्चात आवली मात्र काल के बीतने पर उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। ये नामकर्मों में सब में ऐसा ही लिया है। इसी प्रकार स्थिर और शुभ प्रकृतियों के विषय में कहना चाहिए, उनकी भी बंध विच्छित्ति वहीं पर है ना। परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहाय गति त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर की प्ररूपणा शुभ नाम कर्म के समान है। यश कीर्ति की भी प्ररूपणा शुभ नाम कर्म के समान है, पर यश कीर्ति का संक्रमण अभी जब अन्य का अकेली बनती है तो उसका संक्रमण किसमें होगा? तो कहते विशेषता इतनी है कि उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति के अंतिम समय में करना चाहिए। नामों की लिखा है नाम कर्मों की। क्योंकि अन्य का बंध है तभी तो उसका संक्रमण पॉसिबल है, बाद में नहीं। परंतु ये बंध रही है तो प्रशस्त ध्रुवबंधी नाम कर्म जो है, प्रशस्त वर्णादि भी ये होते हैं, तेजस कर्माण भी प्रशस्त प्रकृति है, उसमें से गुरु लघु परघात ध्रुवबंदी नहीं है, उपघात ध्रुवबंदी पर वो अशुभ है। निर्माण अगुरु लघु और निर्माण वो प्रशस्त है। यानी वहां उसका यश कीर्ति का वहां पर जब बंद रही है ना तो अधप्रवृत्त संक्रम होगा, पर वहां मैक्सिमम होगा, बस इतना ही किया, क्योंकि बनती है तब तक उसका अधप्रवृत्त बताया है ना। एक केंद्रीय आतप और स्थावर नाम कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक ईशान देव देव पर्याय से पीछे आकर, हमने देखा ना उसके नपुसक वेद का भी उत्कृष्ट है और भी एक केंद्रीय जाति का भी उत्कृष्ट बंद करेंगे, यानी पहले गुणित कर्मांशिक रूप से है और फिर ईशान में उत्पन्न होकर वहां पर भी एक केंद्रीय का मैक्सिमम बंध किया है। पीछे आकर एंड मरकर नीचे आकर एक बार भी कषायों को न उपशमा कर सर्व लघु काल में एक क्षपणा में उद्यत होता है, क्योंकि इसकी ये प्रकृतियां कैसी है, नवे में क्षपणा होने वाली प्रकृतियां हैं। उसके निक्षेपण करते हुए अंतिम समय में उनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, यानी उनकी क्षपणा का अंतिम समय लेना। ईशान कल्पगत देव पर्याय से पीछे आकर सर्व संक्रम के द्वारा उद्योत नाम कर्म का संक्रमण करने वाले क्षपक के उसके उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का स्वामित्व देना चाहिए। वो भी वहीं पर लेना है, जैसे केंद्रीय जाति को लिए वैसे उद्योत के लिए भी वहीं से आया हुआ जीव ले लेना। इसका कारण क्या है? समाधान, त्रस जाति नाम कर्मों को बहुत बार बहुत बांधता है और एकेंद्रिय जाति नाम कर्मों को स्तोक बांधता है। इसलिए नारक जीव उद्योत नाम कर्म को त्रस जाति नाम कर्म के प्रतिभाग रूप बांधता है, परंतु ईशान देव उसको ही एकेंद्रिय जाति नाम कर्म के प्रतिभाग रूप बांधते हैं। नहीं समझे? नारकी जीव जो है और उसको मिथ्या तो में रखना है, जो गुणित कर्मोशिक रखना है, तो उसको थ्रू आउट तीरंज गति बांध रहा है और बीच बीच में उद्योत को ही बांध रहा है। तो पंचेंद्रिय जाति बांधते हुए उसको बांध रहा है, और ईशान देव कब बांधेगा उसको? उसको उत्कृष्ट संकलेश एकेंद्रीय जाति बांधता है। अनेक बार वो एकेंद्रीय जाति बांधता रहा तो उसके साथ उसने उद्योग भी बांधा। इस तरह से लिए किसको ज्यादा होती है बस इसको, यानी एकेंद्रीय का जाति का बंध किया उसने बहुत बार। यहाँ लिखा ना नारक जी उद्योग नाम कर्म को त्रस, वो नारक जीव नारकी वहाँ ज्यादा बांधता है। हाँ, यानी त्रस जाति नाम कर्म के प्रतिभाग रूप बांधता है, यानी त्रस के साथ बांध रहा है। वो त्रस के साथ बांध रहे, उद्योत का बंद कर रहा है, तो कितने का कर रहा है? तीस का कर रहा है, तीस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और तीस में ने उसके शरीर नाम कर्म को एक गण के उसके 28 भेद हो जाएगी। और देव जो बांधता है वो 26 का बंद कर रहा है, एक इंद्रिय का, तो उसमें ज्यादा माल जाता है, ये कह रहे थे। इस कारण ईशानगत देव पर्याय से पीछे आए हुए जीव के उद्योत नाम कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का स्वामित्व देना चाहिए। यानी वो त्रस जाति नाम कर्म का प्रतिभाग, यानी 30 का बंद, और यहाँ एकेंद्रीय जाति के साथ 26 का बंध। वो बंध के स्थान याद है कि नहीं? एकेंद्रीय अपर्याप्त वो 23 वाला था, एकेंद्रीय पर्याप्त केवल ऑर्डिनरी था तो 25 वाला था, आतप उद्योत होगा तो 26 वाला होगा, तो उसमें अधिक मटेरियल चला जाएगा। पेज नंबर 431। अप्रशस्त संस्थान, यानी नीचे के पांचों, अप्रशस्त सहनन, अप्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श उपघात, अप्रशस्त विहार गति, नीच गोत्र, अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय और अयश कीर्ति, इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? पहले जिसने संचय ज्यादा किया ऐसा लेना, जो गुणित कर्मांशिक नारकी जीव सातवीं पृथ्वी से निकलकर सर्व लघु काल में एक सपना में उद्यत होता है, उस अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के उक्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, क्योंकि वहां यश कीर्ति में संक्रमित होती है, वह मैक्सिमम उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम हो जाएगा उसका। ये सब अप्रशस्त प्रकृतियां हैं और वह बंधने वाली यश कीर्ति में संक्रमित हो जाएगी। पहले इसमें से किसी का सपना नहीं होती है, इसमें से यहाँ इसमें से कोई सपना नहीं है।
अच्छा, वो अन्य रूप
है, वो तो अंत में द्विचरम समय में अयोगी में जाके उसका सपना होगी, यहाँ कहीं उसकी सपना नहीं है। सत्ता में उसका गुण संक्रमण चल रहा है, नहीं बनने वाली है ना, अपूर्व कारण से उसमें गुण संक्रमण होता रहता है, तो गुणित 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 होते हुए दसवें के अंत में मैक्सिमम होगा, ये कहना चाहते हैं। द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति, अब ये तो क्षपणा वाली है ना, नवे में सूक्ष्म अपर्याप्त नहीं लेते, उसमें सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण नाम कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो तीर्यंच और मनुष्यों में पूर्व कोटि पृथक्त्व तक विचरण करके कषायों को न उपशमा कर सर्वलघु काल में क्षपणा करता है, उसके संक्रम करते हुए अंतिम समय में उनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। विशेष इतना है, पूर्ण कोढ़े दो, अपर्याप्त नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में होता है, क्योंकि वो एकेंद्रिय स्थावर आतप द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय वगैरह वो तो नवे में जाते हैं, वहाँ अपर्याप्त नहीं जाता है, पर्याप्त रहता है, अयोगी के द्विचरम समय तक रहता है, पर संक्रमण कहाँ तक होता है? सूक्ष्म सांप्राय तक, वहाँ उसका मैक्सिमम होगा, क्योंकि गुणित क्रम से अधिक 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 होते हुए वहाँ पर उसका मैक्सिमम होगा। उच्च गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक चार बार कषायों को उपशमा कर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है, तत्पश्चात नीच गोत्र को बांधता हुआ जो नीच गोत्र की बंधविच्युति के पश्चात, बंधविच्युति कहाँ है? दूसरे में, थोड़े ही काल में सिद्धि को प्राप्त होने वाला है, उस अंतिम समयवर्ती नीच गोत्र बंध के उक्त अल्प सिद्धि काल के प्रथम समय में उच्च गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, यानी कषायों को उपशमा कर वगैरह, यानी उसमें नीचे के निषेकों में अधिक द्रव्य कर दिया है, और वो उच्च गोत्र का संक्रमण होता है, यानी वो नीच गोत्र में संक्रमित होता है। कब होगा? जब तक नीच गोत्र बनता है, तो पहले से मान लेते ऊपर के गुणस्थानों में जाने वाले, दूसरे तो ऊपर कोई जाता नहीं है, तो पहले से ऊपर जाने वाले के जब वो निज गोत्र की बंदे विच प्रायोगिक लब्धि में आता है, या ऐसा जहाँ कहीं पर हम देखते हैं, सम्यक तो होने के पहले, अंतर्मूर्त के पहले उसका निज गोत्र बंधना रुक जाएगा, बंधापसरण भी होता है ना उसका, अंतिम समय तक तो बनता नहीं, वो तो केवल सातवें नरक का नार के ही अंतिम समय तक निज गोत्र को बांधता है, हमको वहां नहीं लेना है, चार बार उपशमा कर मिथ्यात्व में आया हुए जीव लेना। तो जब निज गोत्र बांध रहा है और अभी आगे उसका बंधापसरण होने वाला है, वहां पर उसका उच्च गोत्र का उत्कृष्ट संक्रमण है।
बहुत सारी प्रकृतियों में चार बार उपशमा कर लिया है और बाकी के प्रकृतियों में उपशम नहीं किया है, इसीलिए ये क्यों ऐसे बता रहे हैं?
क्योंकि यहाँ पर जो
अप्रशस्त प्रकृति में उन लोग ने उपशम नहीं किया है,
उपशम आया नहीं है,
तो उसका उपशम नहीं होने पर उसका द्रव्य ज्यादा होगा,
उसको नहीं उपशमाया नहीं है, तो उपशमने वाली प्रकृति नहीं है।
हाँ, उपशम होने वाली नहीं है सभी प्रकृति, तो हाँ, उसमें ये उपशमाने का
जहाँ उपशमाया जाता है वहाँ उसके नीचे के निषेकों में अधिक द्रव्य कर दिया जाता है। उपशम हुआ तो अन्य में भी गुणश्रेणी तो उनमें भी होती है, गुणश्रेणी रूप रचना हो जाती है ना नीचे, हाँ,
तो
गुणश्रेणी करने से वो तो निकल जाएगी।
नहीं तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों में गुण श्रेणी होगी।
देखो किसमें नहीं लिया है, अभी जो अप्रशस्त कर्म वगैरह लिया था उसमें नहीं उपशमाया है, ऐसा लिया था, और उपशमाने के लिए कौन कौन से लिए थे? अभी उच्च गोत्र को चार बार उपशमाया था, है ना, और भी हमने देखा था यहाँ पर चार बार उपशमाया था वो, आहारक शरीर के लिए लिया था, हाँ आहारक शरीर को लिया था, प्रशस्त प्रकृतियों को लिया है। यहाँ पर भी संज्वलन लोक के लिए भी सर्व उसमें भी चार बार उपशमाया था, हाँ उपशम किया था। और बाकी के लिए ये उपशमाने की कंडीशन नहीं डाली थी, संज्वलन लोभ में लिया था और अभी ये जो अप्रशस्त कर्मों में लिया है, उच्च गोत्र में तो उसको चार बार उपशमा कर फिर मिथ्यात्व में भेजा है, उसका अर्थ यही कि नीचे के निषेकों में उसका द्रव्य उत्कृष्ट हो जाता है वहां पर। अभी रुकेंगे यहाँ, क्योंकि अभी यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम यहाँ समाप्त हो जाता है स्वामित्व, और जघन्य प्रदेश की स्वामित्व की बात कल से प्रारंभ करेंगे हम, यही रुकते हैं। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। बाय बाय।